हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। विहा का चेहरा पक्के हुए टमाटर की तरह लाल हो गया था और उसके फूले हुए मुलायम गाल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। उसका सर अभी भी वेदांत के कंधे पर टिका हुआ था और आंखें बंद थीं, घबराहट से बस पलकें कांप रही थीं। वहीं वेदांत के होंठ अब विहा के कान के पास थे और गर्म सांसें उसके गले को सहला रही थीं। वेदांत ने आहिस्ता से उसके गाल को अपनी उंगलियों से छुआ तो विहा ने हल्के से सिसकी भरी। वेदांत को जब लगा कि अब विहा की सांसें नॉर्मल रिदम से चल रही हैं, तो उसने फिर से विहा का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और इस बार वो बहुत धीरे धीरे उसे किस कर रहा था, जैसे वो इस लम्हे को और भी ज्यादा लंबा खींचना चाहता हो। वहीं उसके होठों की ये धीमी रफ्तार विहा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने पैरों को हिलाते हुए वेदांत को खुद से दूर करने की कोशिश की। वेदांत ने एक हाथ से उसकी कमर को कस के पकड़ा और दूसरे हाथ को उसके बालों में उलझाते हुए बिना किस रोके ही हल्के से गुर्राया, जैसे विहा को धमकी दे रहा हो कि उसे हिलने की जरूरत नहीं है। विहा भी कुछ न कर सकी शिवाय घुटी हुई सिसकियां भरने के। अचानक केबिन का हल्का खुला दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला और एक धड़ाम की आवाज़ हुई। सामने से जूली आ रही थी जो अपनी फाइल में उलझी हुई थी। वो कुछ कदम तक आगे आने के बाद बोली, वेदांत सर। उसकी बात अधूरी रह गई और उसके बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। नज़र जैसे ही सामने गई उसका पूरा चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ गया और वो जल्दी से मुड़ते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नोक करके आना चाहिए था, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने लगी, वेदांत ने विहा के होठों को छोड़कर गहरी सांसों के साथ कहा, नहीं रुको, तुम की फाइल देने आई थी क्या, मुझे दो। विहा ने अपना चेहरा वेदांत की गर्दन में छुपा रखा था और अपनी बेकाबू सांसों को बटोरने की कोशिश कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो जूली से आंखें मिला पाए। वहीं यही हाल जूली का भी था। उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को वहीं सोफे के पास रखी टेबल पर रखा और लगभग दौड़ते हुए केबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही जूली ने अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए कहा, ये ऑफिस बीते कुछ दिनों में इन कपल्स का पर्सनल स्पेस बन गया है। हम जैसे सिंगल एम्प्लॉयज कहाँ जाएं अब? कम से कम इन्हें वक्त तो देखना चाहिए कि इस वक्त ये कोई किस करने की जगह है। काम खत्म होने के बाद भी तो ये सब किया जा सकता है। और ये विहा मैडम, ये ऑफिस में काम बिल्कुल नहीं करती हैं और सर जो काम करते हैं उनका भी आधा काम रुकवा देती है। फिर जूली ने झल्लाते हुए अपना सर झटक कर कहा, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा और साथ में इन सब लोगों के बीच जो काम बच जाता है वो भी एक्स्ट्रा मुझे ही करना पड़ेगा और मेरी सैलरी उतनी की उतनी ही रहने वाली है। इतना बोलकर जूली वापस अपने केबिन में चली गई। वहीं अंदर केबिन में विहा अब वेदांत के सीने पर मुक्के मारते हुए उस पर अपना गुस्सा उतार रही थी। आप वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे क्या? मैं तो थकी हुई थी इसीलिए सीधे अंदर आ गई। वेदांत ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अपने ससुर की वजह से परेशान था इसलिए भूल गया ना टमाटो। विहा ने रोनी सूरत बनाकर वेदांत की कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप कितने बेशर्म हैं, अब आपकी असिस्टेंट पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। एक तो मैं काम भी नहीं करती हूँ और ऊपर से आपका काम भी थका देती हूँ। वेदांत ने गर्दन टेढ़ी करके विहा के माथे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही अपने करीब खींचती रही तो थोड़ी देर बाद तुम्हारी सांसें फिर से उखड़ने लगेंगी। ये सुनकर विहा को ध्यान आया कि वो वेदांत की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब भी खींच रही है। उसने जल्दी से उसकी कॉलर छोड़ते हुए अपना चेहरा सामने की तरफ करते हुए कहा, अब मैं कैसे उसका सामना करूंगी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो पता नहीं मुझे किस नज़र से देखेगी। वेदांत ने अपना सर विहा के कंधे पर टिकाया और उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भरते हुए धीरे से बोला, अगर तुम खुद बाहर नहीं जा सकती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर ले जाऊंगा और मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें किस नज़र से देखता है। इतना बोलकर वेदांत ने अपना चेहरा घुमाते हुए धीरे से विहा की गर्दन को चूम लिया, जिससे विहा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो अपना कंधा हिलाते हुए वेदांत को खुद से दूर करते हुए बोली, प्लीज मत करिए ना। वेदांत ने गहरी सांस ली और फिर उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे फिर से सोफे पर बैठा दिया और फिर खुद उठते हुए उस पर फिर से झुका और उसके माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है, इतने दिनों बाद कॉलेज गई हो, बहुत सारे असाइनमेंट रह गए होंगे, तुम वो कम्प्लीट करो और मैं अपना काम कम्प्लीट करता हूँ और घर साथ ही चलेंगे, तो तुम्हें किसी की नज़रों का अकेले सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बोलकर आखिरी बार वेदांत ने विहा के सर को सहलाया और फिर खुद अपनी डेस्क पर चला गया। विहा सोफे पर बैठी बस उसे देखती रही। वेदांत ने अपनी चेयर पर बैठकर अपनी शर्ट की बाजू को कोहनी से ऊपर तक फोल्ड किया और फिर लैपटॉप ऑन करते हुए उसमें टाइपिंग करने लगा। बीच बीच में वो अपनी फाइल के पन्ने पलटते हुए उसे ध्यान से देख रहा था। विहा अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर बस उसे निहार जा रही थी। उसकी नज़र वेदांत के हाथों पर पड़ी जिसमें नीली चमकती तनी हुई नसें दिख रही थीं। वेदांत के सिल की बाल उसके फोरहेड पर बिखरे हुए थे। बीच बीच में वो अपने हाथ में पकड़े पेन को अपने होठों के बीच दबाते हुए कुछ सोच रहा था तो कभी बिल्कुल सीरियस होते हुए सिर्फ लैपटॉप को देख रहा था। और काम में बिजी होने के बाद पता नहीं क्यों वो विहा को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इतना शायद कभी नहीं लगा था। विहा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए अपने मन में कहा, मेरा पति कितना हॉट है और साथ में कितना केयरिंग भी है, मेरी ओवरथिंकिंग भी झेल लेता है, ही इज परफेक्ट ड्रीम पार्टनर। और ये अभी से कितना रोमांटिक है, जब हमारे बीच सब कुछ हो जाएगा तब तो ये और। बोलते बोलते विहा के ख्यालों पर फुल स्टॉप लग गया और विहा ने गौर किया कि वो क्या सोच रही। विहा ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, छी छी, ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं इतना गंदा क्यों सोच रही हूँ। फिर उसने घबराई नजरों से सामने वेदांत को देखा जो अब उसे आंखें छोटी करके घूर रहा था। वेदांत ने अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए इशारे से विहा से पूछा कि क्या हुआ है। विहा ने जल्दी से ना में गर्दन हिलाई और फिर अपना बैग उठाते हुए उससे अपना रजिस्टर निकालने लगी। वो काफी शर्मिंदा थी अपनी ही सोची हुई बात को लेकर। विहा ने फिर धीरे से कहा, क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं, मेरे दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस गया है। वेदांत ने जब वापस उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो इस बार उसने अपना गला सही करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, ऐसे अकेले पागलों की तरह बड़बड़ाना बंद करो। विहा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आप अपना काम करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद ही प्रॉब्लम हूँ। उसने आखिरी लाइन बहुत धीरे से बोली थी जो वेदांत को नहीं सुनाई दी, बस उसके हिलते हुए होंठ नजर आए थे। वेदांत ने अपनी दो उंगली अपने फोरहेड पर रखकर कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता है। पर उसे ये भी पता था उसकी छोटी सी बीवी कितनी जिद्दी है। अगर उसने बोला है कि वो उसे नहीं बताएगी, मतलब वो चाहे हजार बार उससे पूछ ले, विहा उसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बताने वाली है, इसलिए उसने भी अपने काम पर फोकस करना जरूरी समझा। वहीं दूसरी तरफ आज रूहान बहुत परेशान था क्योंकि आज फिर अनाही ऑफिस में नहीं थी। काफी देर अपने फोन को घूरने के बाद आखिर में हताश होते हुए रूहान ने खुद ही अनाही को कॉल किया।
अनाही फिलहाल एक शॉप पर मौजूद थी और वहां कुछ फैब्रिक देख रही थी। उसने अपना फोन उठाकर कंधे और कान के बीच लगाया और दोनों हाथों से उसे फैब्रिक को पलटते हुए बोली, बोलिए रूहान जी। रूहान ने अनाही के फोन की तरफ से आसपास की आवाजों को सुनकर आंखें छोटी करते हुए कहा, अब मार्केट में है? अनाही ने धीरे से हाँ कहते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली कुछ चीज़ें खरीदनी थी, मुझे आधा घंटा और लगेगा, मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। गाइज, कैरेक्टर को गिफ्ट देना क्यों बंद कर दिया? मुझे लगा था जितना रूहान अनाही आपको पसंद है वो बहुत जल्द फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे, पर आप लोग उसे गिफ्ट दे ही नहीं रहे, ना ही उसके फैन बन रहे हो।